Jeho poučen pravý sobě sám, že se vám to zdaží má hrvidora, že nám se třeba rejka nebo do toho hrvidora, že tím dodí, že hrvidora nebo do toho hrvidora, že hrvidora nebo do toho
hrvidora. Narayana, 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 प्रपन्न पारिजाताय तोपवे श्री गोपानजे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृगे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बराधर्णबिम्बफलाधरुष्ठ पूर्णयन्द्रसुन्दरमुखाधर्मनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति नारायण नारायण नारायण। आज बहुत ही पावन दिन है, बड़े आनंद का दिन है। भगवत गीता का इस रूप से अवतार का दिन है। जैसे जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है, ऐसे ये गीता एकादशी है। महात्माओं में, संतों में, विद्वान पंडितों ने निर्णय किया है कि आज दिन कही गई थी गीता। महाभारत के देखने से, पूरा प्रसंग विचार करने से थोड़ा मतभेद होता, कोई त्रयोदशी कहते हैं, कोई एकादशी कहते हैं, ऐसा थोड़ा मतभेद, ज्यादा एकादशी कोई मानते हैं। तो वो एकादशी का आज दिन है, बड़ा सुंदर पवित्र। तो गीता जयंती, जय होती गीता की जयंती है आज। इसका उत्सव मनाना हरेक आदमी का धर्म है, कर्तव्य है। भगवत गीता में सबके लिए मुक्ति का द्वार बताया है। यद्यपि ये ग्रंथ वैदिक संप्रदाय का है, सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, वैदिक धर्म का है, परंतु इसमें कल्याण का मार्ग सबके लिए बताया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, इसके सिवा है यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश में रहता हो, कैसा ही ज्ञान हो, वो अपना कल्याण कर सकता है। भगवद गीता में भगवान ने बात कही है, वो कहता हूँ मैं। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, 3 अध्याय एक बिंदी लगा दो, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यसी अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मोह भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। कर्मयोग की विधि इसमें जितनी बताई है उतनी और श्लोकों में नहीं है। ये विधि बताने वाला एक श्लोक अपने एक ही नंबर का है। कर्मयोग भी वो जो भगवान के अर्पण कर दिया जाए, कर्म प्रधान कर्म भक्ति मिश्रित कर्मयोग और भक्ति प्रधान कर्मयोग, ऐसे 3 भेद माने हैं महापुरुषों में। ऐसे ये भक्ति की साथ, भक्ति को साथ में लेकर कर्मयोग है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कर्म प्रधान है, 18वें अध्याय में त्याग प्रधान है 12वें श्लोकों तक, और साथ में सकर्मणात्म भेद से जो पूजन कर रहे हैं अठारह अध्याय में, इसमें सब बातें आ गई है। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास, सब कर्म भगवान में अर्पण कर देना। अध्यात्म चित्त से कैसे अर्पण करे? अध्यात्म चित्त से, पर केवल कल्याण की कामना के सिवा कोई कामना ना हो। कल्याण की कामना कामना नहीं है, परंतु अध्यात्म चित्त से चित्त में केवल अध्यात्म उन्नति हो और कोई वासना ना हो। और निराशीर निर्ममा आशीष नाम इच्छा का है, चाहना का है, तो आशीष इच्छा से रहित होकर करे। और निर्ममा ममता रहित हो, जो प्राप्त वस्तु है उनमें ममता न हो और अप्राप्त की इच्छा न हो। निराशीर निर्मम भूत्वा। और एक बात विशेष कही है, ये तो बातें बहुत देखी कही, विगत ज्वर संताप रहित, ये इसमें विशेष बात आई है इस श्लोक में। हरेक जगह इतना विशेषण नहीं आता है, विगत ज्वर का विशेष वर्णन नहीं है इसमें है। क्यों है इसमें वर्णन? कि युद्धस्व का ना युद्ध करो, तो युद्ध में संताप होना स्वाभाविक है। अपने पक्ष के मर जाए तो तपन होती है, दूसरे मर जाए तो खुशी आती है, तो ये संताप ही है। दुख में वो सर्वम विजय की ना, ये ताप ही बताया गया है। तो संताप रहित होकर के युद्ध से युद्ध करो। तात्पर्य होता है कि मनुष्य को अपना कोई काम करना चाहिए, दृष्टि केवल अध्यात्म से हो, केवल कल्याण का ही अपना विचार रहे, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। इस उद्देश्य से सब कर्म भगवान के समर्पण कर दे। मनो यत करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी तदासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। पांच क्रिया बताई, यत करोसी यदश्नासी दो और ये ज्ञान तप यत तपस्यसि तत् सर्व मदर्पणम् कुरु मे अर्पण कर दो। यत करोसी यदश्नासी से तो सांसारिक काम, खाना पीना आदि, शरीर निर्वाह कुटुम्ब निर्वाह आदि क्रिया है। दान यज्ञ तब ये होगी वैदिक शास्त्रीय क्रिया। तो लौकिक क्रिया होता है, वैदिक शास्त्रीय क्रिया वो सब भगवान के लिए करे, को अपना कोई उससे संबंध नहीं, कुछ लेन देन नहीं। खाना पीना भी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। सोना बैठना जगना भी, शौच स्नान आदि भी भगवान के लिए। ऐसे भगवान को अर्पण करके और करे, इच्छा ना रखे, ममता ना रखे। है वस्तु उनके बीच में ममता ना रखे, न है वस्तु उनकी इच्छा ना करे और संताप न हो। राग द्वेष हरख शोक प्राप्ति अप्राप्ति में सिद्धि असिद्धि में सम रह करके काम करे। इस मत का जो अनुष्ठान करेगा, ये इस वास्ते बताया कि भगवान कहते हैं 31 में, ये मे मत मेदम अनुतिष्ठन्ति, मान नित्यम अनुतिष्ठन्ति, ये मेरा मत है। इसका जो नित्य अनुष्ठान करते हैं, नित्य निरंतर इसमें ही रहते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। श्रद्धावंतर सूर्य अनुसूयंतर, निंदा न करे, दोष दृष्टि न करे, श्रद्धा पूर्व करे, वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो ते भी मुच्यंते, कर्म भी ही ते भी मुच्यंते, वे भी मुक्त हो जाते हैं। तो एक असर पड़ता है कि वे भी मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्त होने का कोई मार्ग दूसरा बढ़िया है, वे भी मुक्त हो जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये कोई गौण मार्ग हुआ? ये नहीं, आपकी का अर्थ ये नहीं है कि वे भी मुक्त हो जाए। ये वे भी मुक्त हो जाए कहने का तात्पर्य, तेरे को तो मैं कह रहा हूँ कि मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य, और फिर निराशी नर्मो भूत्वा, और विगत जर है सन, तुम युद्ध स्व, तुम युद्ध कर, आज्ञा देता हूँ। तो आज्ञा पाल से कल्याण हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। धनी की आज्ञा में धन मिले, महात्माओं की आज्ञा में तो मुक्त मिले, भगवान की आज्ञा करे तो भगवान मिले। आज्ञा पालन वाला घाटे में नहीं रहता, कमी में नहीं रहता। आज्ञा होगी, आज्ञा का पालन किया तो मुक्ति करना उसके जिम्मेवारी आ जाती है जिसकी आज्ञा पालन करी। साधारण तो आदमी मुक्ति कर नहीं सकता, मगर भगवान और भगवान के प्यारे भक्त है, बिना हित करने वाले, इनकी आज्ञा पालन करे तो अपने से कल्याण हो जाए। तो मैं तेरे को कह रहा हूँ, केवल मेरे पक्षपात नहीं है, तेरा ही कल्याण नहीं, जो कोई मेरे मत का अनुष्ठान कर रहे हैं वे भी मुक्त हो जाएंगे। किसी संप्रदाय के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, कैसे ही क्यों हो, और जो इस मत का अनुष्ठान नहीं करते, ये तू ये तो अभ्युष्ठान ये मतलब मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते है, इसके अनुसार जीवन नहीं बनाते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ा, सब तरह के ज्ञान से मूर्ख है, कोई ज्ञान उनको नहीं है। जिनसे कल्याण हो जाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। संसार का बहुत ज्ञान करो तो सर्व ज्ञान विमूढ़ा, स्थान विधि नष्टान अशेष दशा, उन बेचे थे आदमियों को नष्टान विधि नष्ट हो गए, पतन हो गए, ऐसा तुम समझ। तो अन्य दृष्टि से भगवान ने इस मत को इतना पुष्ट किया है जो सब कोई आ जाते है, इसके अंतर्गत कोई बाहर नहीं रहता। नहीं अनुष्ठान करते हैं, दोष दृष्टि करते हैं, उनको तो नष्ट हुए ही समझ। दिखने में अच्छे दिखते हैं परंतु खोखला है, कुछ नहीं है, भीतर में ठोस चीज नहीं है। वे बंधन में चले गए, महान नुकसान में चले गए। तो चेपी का अर्थ जो कोई इसका अनुष्ठान कर रहे, तात्पर्य क्या निकला कि मेरी गीता जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार कोई चलेगा, गीता बिना जाने भी इसके अनुसार चलेगा, वही भी मुक्त हो जाएंगे। उनको ये बात नहीं, ये बात गीता में भी सिद्धांत वर्णन की है, ये नहीं कि गीता माने, मेरा कहना माने तभी कल्याण हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो सिद्धांत है वो निर्विवाद ऐसा है, मात्र जीव का कल्याण करने वाला है। तो भगवत गीता मात्र प्राणियों के लिए कल्याण करने वाली है। मात्र प्राणियों में विशेषता है मनुष्य की, क्यों मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे कर नहीं सकते। पशु पक्षी और 84 लाख योनी जीव बेचारे कर नहीं सकते, उनमें ना समझने की शक्ति है ना करने की शक्ति है, और दूसरी बात के कोई अधिकारी ये नहीं है। कर रहे तो उनका ही कल्याण हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के भक्त गीत बन गया, जाम्बवानी बन गया, हनुमान जी बन गए, सब बन जाते हैं, कोई पक्षियों को काकभूषण जी बन गए। तो भगवान के भक्त बनने में, कल्याण करने में मना किसी की नहीं है। कोई प्राणी कहीं का ज्ञान हो वो भी मुक्त हो सकता है। उनको ज्ञान न हो, वो अनुष्ठान न करे तो मनुष्य बड़े बड़े अच्छे ब्राह्मण है, तब बड़े साधु हो गए, बड़े अच्छे आदरणीय है, परंतु भगवान के मत का अनुष्ठान नहीं करते तो जयराम जी की उनका कल्याण नहीं हुआ। ऊंचे वर्ण के, ऊंचे आश्रम के होने पर संसार में अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आदर पा सकते हैं, पर परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे विमुख है, उस परमात्म तत्व से विमुख है। नाशवान पदार्थों की तर भी उनकी वृत्ति है, संग्रह करना, भोग करना, इसमें रात दिन लगे हुए है। वो क्या जाने अनुष्ठान हो, क्या कर मुक्ति जाने, क्या कल्याण होता है, तो उनकी बात नहीं है। जो कोई ज्ञान उसको कल्याण होता है, ऐसा विचित्र अलौकिक विलक्षण संपूर्ण जीव मास का कल्याण करने वाला भगवद गीता ग्रंथ है। इस ग्रंथ की आज अपने ही मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो असली उत्सव मनाना ये है कि उस गीता के अनुसार हमारा जीवन चले। गीता रूपी ढाली में अपने को ढाल लेना चाहिए। हमारे यहाँ कई आदमी गीता की एक पुस्तक है तो हो गए, पुस्तक तो हो गए, अमुक अध्याय का अमुक श्लोक से तो वो बता देंगे, तो गीता की एक पुस्तक पुस्तकालय तो होगी, अलमारी तो होगी गीता जी की, पर गीता के अनुसार जीवन हो जाए। गीता में किस लोग कहाँ का कैसा है सब बता सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, उल्टा सुलटा कैसे बात कर सकते हैं। तो गीता की एक एक तरह से चलती फिरती मूर्ति है, पर असली मूर्ति वो है कि जिसका जीवन मई सर्वाणी कर्माणी सदने से अध्यात्म से निराशी निर्मम होता युद्ध स्वरा, ऐसे होकर जो काम करते हैं वे जीती जागती गीता की प्रत्यक्ष मूर्ति है। उनके रोम रोम में गीता है, गीता के अनुसार जीवन है, जीती जागती गीता है। तो गीता रूपी झाड़ी में ढल गया, जैसे सोना है वो ले करके और मूर्ति में मूर्ति के सांचे में ढाल दे तो मूर्ति बन जाती है, चांदी है तांबा है जो कुछ ढाल दे। ये मिट्टी के बनाते हैं मूर्तियां, वो भी मिट्टी को लेकर सिकनी मिट्टी को और सांचा होता उसमें डाल कर ऐसे करते सच चेहरा निकल जाता है, निकल लग जाता है। ऐसे गीता के हम सांचे में अपने जीवन को डाल दे, पूरा पूरा जीवन गीता के अनुसार तरना पीना खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना देखना जो कुछ करे गीता के अनुसार जिसका हो। और सज्जनों एक बात है, आप विचार के भीतर का विचार कर ले तो ऐसा जीवन हो जाएगा, हमारा विचार होने से हम हो जाएंगे ये बात है। पर एक विलक्षण बात और है, भगवान की तरफ चलता है तो उसकी भगवान विशेष मदद करते हैं। दरिया भूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाव डो तो हरि चाले सौ कोस। गीता में ऐसा तथ्य है लिखा है, एक माम प्रपंचन से कांस दे, संतों ने कहा एक कदम चला तो सौ कोस भगवान चलक रहा। मन भगवान तो वो है ही, सौ कोस करो हजार कोस लाख कोस कर दो करोड़ कोस कर दो इतने सर पर आया वही मिल जाए। ये जा जन्म को जब ही जन्म को ना सही तब ही, देरी का काम नहीं है। भगवत गीता कैसा विलक्षण ग्रंथ है सज्जनों, मैं तो विचार करता हूँ देखता हूँ तो मैं कह नहीं सकता, मैं जानता भी नहीं हूँ विशेष, परंतु जितना जानता हूँ समझता हूँ उतना भी कह नहीं सकता, विवेचन कर नहीं सकता, वो महिमा कहने में आती नहीं। कहने में आवे कैसे, ये तो अनिर्वचनीय है, भगवान के प्रेम का स्वरूप भी निर्वचन करके कोई बता नहीं सकता, बोध है उसको भी निर्वचन करके नहीं बता सकता। अरे संसार का वर्णन भी अनिर्वचनीय है, ख्याति बताया अख्याति आत्म ख्याति अनाध्याय ख्याति असत ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति, संसार को भी अनिर्वचनीय कहा है, इसको क्या कहना। परमात्मा तत्व की तरफ तो बस होना चाहिए आदमी, फिर उसके सब कुछ हो जाता है तो कह नहीं सकते वर्णन नहीं कर सकते, परंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कह नहीं सकते वर्णन नहीं कर सकते अनुभव, हाँ क्यों उसमें भगवान मदद कर रहे हैं, कहने के सूर्य में भी भगवान मददगार है वो, एकदम बात प्रत्यक्ष आप माने न माने जाने न जाने, परंतु भगवान के आश्रित और कहता जाया मर्म मोक्ष है, माम आश्रित यतन दिए कैसे जानते अंधकार में मेरे को जानते हैं माम आश्रित समझिए। और भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर मेरे में परम भक्ति करके कहेगा वो भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान ने हद कर दी है कि मेरा इन बातों का प्रचार करेगा मद भक्तेशु अभिधाय स्थिति, मेरे भक्तों को जो कथन करेगा मेरे में परम भक्ति करके, मई भक्ति कृत्वा मेरे में भक्ति करके और कथन करेगा, मामे निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। इतना कहने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ, मेरे को प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, इससे बढ़ करके प्यारा काम करने वाला कोई दूसरा होगा नहीं। कितने तप करे, जप करे, ज्ञान करे, कितनी बातें करे, परंतु मेरे भक्त में कहने वाले भक्त को गीता कहता है उसके समान मेरा प्यारा कोई है नहीं। और भविष्य प्रिय दो रोग हुई दूसरा प्रिय सर भी नहीं होगा, वो प्रिय तम का दूसरा है ही नहीं। तम अवस्थ आ जाते है ये हद होगी, बस आखिरी पद है। अन्य प्रियतर होगी, प्रियतर भी नहीं होगा, प्रियतम क्या होगा। तो भगवत गीता का पसंद पासन करता है, मनन करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, गीता के गहरे भावों में डूबकी लगाता है, वो मन तो जीवन मुक्त से भी ज्ञेय गीता के महात्मा आता है, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त तत्व की जीवन मुक्ति जो कहते हैं वो है जो गीता में डुबकी लगाता है। कई वर्षों पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था एक पाठशाला के स्कूल उसके हेडमास्टर से गुजराती सज्जन, उन्होंने एक बात पूछी। गीता की मेरी रुचि रही, गीता का मैं कहता रहा, मन करता रहा वर्षों से। गीता का परिचय हमारे सम्मत 1972 से है, तो जब से बच्चे थे खेलते थे, कभी पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, नकल भाषते सूर्य ये श्लोक सिखाया था मेरे परीक्षा के लिए कि कैसा भी पढ़ने में संस्कृत कैसा पढ़ेगा, ऐसा विचार था। तो श्लोक मैंने सुना था, सीख लिया। अब क्या नकल भाषित सूर्य को न पाओ, हम समझते कुछ नहीं, श्लोक सीख लिया। उन श्लोक यही सिखाया मेरी परीक्षा के लिए कि ये संस्कृत पढ़ेगा कैसा पढ़ेगा कैसा। तो तब से मेरा परिचय है। फिर गीता में रुचि मारी हुई, पढ़ाई करते समय ऐसी रुचि हुई कि गीता ही पढ़ू मैं तो, और पढ़ने की जरूरत नहीं। महाराज मेरे गीता पढ़ा दो, फिर यार व्याकरण पढ़ लेगा और साथ याद कर लेगा, ऐसे महाराज ने कहा था। उन पढ़ेंगे व्याकरण पढ़े, तो गीता का परिचय मेरे बहुत वर्षों से। तो गीता में ऐसा रस एक भरा है, इतनी विलक्षणता भरी है, मैं तो प्रमाद करने में कमी नहीं रखी। प्रमाद गया जल्दी का पास ही नहीं करता, कभी पर पूरा कर गया, कभी बिल्कुल करना ही नहीं, कभी दो चार अध्याय कर लिया, कभी एक अध्याय कर लिया, कभी एक श्लोक कर लिया, कभी नहीं किया, पाठ ही नहीं किया, कभी यू ही भोजन कर लिया। ऐसा हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहा। बच्चे थे खेलते थे, पढ़ाई करते थे, गीता को जानते नहीं गीता क्या है। और अब भी मैं कहता हूँ गीता मैं जानता हूँ ठीक तरह से, गीता का महत्व जानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ अपने में। मेरे को नए नए भाव, नए नए अर्थ गीता में प्रकट हो रहे हैं, विलक्षण विलक्षण दिख रहे हैं, अलौकिक अलौकिक मिलते हैं। रोजाना कहना नहीं, महीने में वर्ष में तो नए भाव मिलते ही, इसमें संदेह ही नहीं है, ऐसी गीता का भाव है। सज्जनों तो आज गीता जयंती का दिन है, आपकी गीता का अभ्यास करो, लग जाओ गीता में रात दिन कंठस्थ करो। छोटा सा ग्रंथ 700 श्लोक है, छोटा सा पुस्तक है, याद कर लो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, अर्थों को समझो। और बड़ी भारी कृपा है तत्ववेदनी जैसा ग्रंथ गीता जी ठीक है तत्ववेदनी। और अब भी एक साधन संजीवनी नामक गीता भी कर दी है, और गीता माधुरी छोटा सा पुस्तक है, उनमें अगर लेख पाठ करो तो देखो ये आनंद कितना विलक्षण आनंद है। अच्छे पंडित संस्कृत के व्याकरण के आचार्य, उन्होंने ये कहा था कि गीता माधुर्य से गीता का समझ में आता है, नहीं तो संस्कृत पढ़े हुए गीता टीका पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते, और इन गीता माधुर्य से गीता समझ में आ जाती है, गीता क्या कहती है। अच्छे से विद्वान पंडितों ने हमें कहा था, मजा विश्वनाथ जी पंडित आचार्य है, अच्छे नंबर हम पास हुए हैं, अच्छे अध्यापक है, आज विद्वान मनामा में उनकी गिनती है, उन्होंने ये बात मेरे को कही कि इसके समझने से गीता का यज्ञ बताया है, 24 तरह के यज्ञ कहते हैं किस है, वो क्या है इसका तात्पर्य समझ में नहीं आता, और गीता माधुरी पढ़े जिसे वो पाठ करे माधुरी को देख करके कंठ से पाठ करे तो भी तो समझ में आती है गीता क्या चीज है, क्या क्या इसमें लेगा, इतनी बात है छोटी सी पुस्तक। ऐसे गीता सारी संगीनी है, गीता तत्ववेदनी है, आप देखो तो गीता गहरे भावों में आप गहरे उतरो, कितना विलक्षण विलक्षण भाव का है। श्री शेठ जी ने तत्वता में तत्व विवेचनी लिखी, शेठ जी अपने मुख से अपनी वाणी से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते थे, परंतु जब ये टेप निकली है टेप रिकॉर्ड होने लगा, इसका पहले पहले तार पर होता था, एक तार सब महीन महीन उस तार के ऊपर ये आवाज भरी जाती थी। सबसे पहले गोविंद भवन में आए और माइक था अंडे की तरह यूं बैठ रहे छोटा सा, और शेठ जी ने सुनाया तो गीता के अर्थ कहे, उसमें गीता जी ने शेठ जी ने कहा मेरा गीता पर अधिकार है, सब से सुना नहीं था मैंने पहले कभी, पीछे भी कभी कहा होगा याद नहीं है, वो तो याद है मेरे को, उस यार गीता में कहता हूँ मेरा अधिकार है, तो गीता की बात है मेरे को कहा कि तुम गीता का प्रचार करो, मैंने कहता कैसे करा मैं करो जो करो, तो मैं कहा लिखो हाँ व्याख्यान देखा लिखो तुम भी करो, उनका कहना है तो हमारे और क्या करना था, हमारे कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कोई नौकरी नहीं, दलाली नहीं, कुछ नहीं, हमेशा मुंह उसके आप लोगों की रोटी खा करके दिन निकालते है, तो गीता पर तो गीता ही पढ़ो, अपने क्या है मेरी कोई बात करते हैं तो कहते हैं पढ़े लिखे तो उसने गीता को उसी तरह याद कर रखी है मारवाड़ी भाषा में, और कुछ नहीं है तो जैसे कहते हैं वैसे कोई तरी याद नहीं है मेरे को, याद तो है गीता कंठ से है कर देता हूँ पाठ भी कर देता हूँ, परंतु खुद याद करो क्योंकि गीता के पढ़ने से विलक्षण बात है मेरे मन में आती है, सज्जनों आप माने न माने मेरी कोई बात नहीं है, अपने को भाप निकाल दूंगा मैं तो कह कर अपनी बाई निकाल लूंगा, एक कहावत है बैल बैल छूटे बमन क्या छूटे और क्या करे वो, गीता में विलक्षण अर्थ भरे हुए हैं, पढ़ते पढ़ते तृप्ति नहीं होती है मस्त हो जाता है और विलक्षण अर्थ में भाव प्रकट होते हैं। मेरी धारणा हो गई है कि संसार का कोई पारमार्थिक काम कोई ऐसा नहीं कि जिस गीता के पढ़ने से उसे समझ में नहीं आता, जिसका वर्णन नहीं है गीता में ऐसे विषय में भी उसकी बुद्धि काम करने लग जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान कृष्ण की वाणी बहुत विचित्र है, पुराण पढ़ो शास्त्र पढ़ो महाभारत पढ़ो, पढ़ते पढ़ते हुआ तो मत बोलो, कृष्ण भगवान बोले तो उसका मालूम हो जाएगा कृष्ण भगवान बोलते हैं, जैसे सूरदास होता है वाणी सुन रहे तमुक बोल रहा है, ऐसे शास्त्रों में भगवान के वचन कृष्ण के कुछ विलक्षण वचन है, जहाँ कहीं बोले वहाँ विलक्षण है, और गीता तो योग में से तो और कहा है, अर्जुन ने जो अश्वमेध पर्व में पूछा है गीता का ज्ञान तो क्या याद नहीं है हमारा कि तुम भूल गया फटका धमकाया, मैं बार बार नहीं कह सकता, योग में स्थित होकर मैंने गीता कही है, भगवान को योग से योग भी होता है क्या, नित्य योग ये नित्य योग मैंने मैं योग में स्थित होकर कही थी, तो योग में स्थित क्या अर्जुन जो घबरा कर सामने गए है ना, बछड़ा जैसे माँ के सामने जाता है गाय के सामने, आती तर करके हुंकार करती हुई थड़ा में से दूध गिर रहा है, बछड़े को हुम करती है, बछड़े को चाटती है, गोमूत्र करती है और पाल जाती है, टपकने लगता है दूध, और बछड़ा होता है भूखा, तो फिर भूखे बछड़े के सामने ऐसे दूध आता है, मैं देखा एक गाय को देखा दूध टपके ना बस रहा है ना दूर वाला है, चलते यूं लगे फटकार लगे रहे। तब ऐसे बस रहा है जाए तो चारों मुखों से, चारों थनों से आ रहे बस रहे, तो एक मुख से पिया एक मुख से, और वो प्यार से प्यार मुखे तो वो भगवान चूता रहे। वो ये माता है ना, माताओं के भी जिनकी स्नेह होता है तो प्यार होता है तो दूध आता है। तो बच्चा तो एक मुख से पिएगा, दो से आता है। तो ये माइयों कहते आंगली जरी अगड़ी आंगली, जैसे गाय भैंस आदि के दूध आता है ना, वो एक धारा थी, एक धारा हमारी एक बहन माता है ना, इनकी एक धारा नहीं होती है, एक एक थर में कई धाराएं होती है, एक थर में कई धारा है। उसको पता लगता है, कोई देखता है जानता है, अरे कुछ नहीं जानता। तो इतने मुझे साथ है, एक थर में कोई चार पांच छह सात धारा होती है जो निकलता है। तो ये क्या करती है, वो आधा अंगुली दे दे तो निकलने नहीं देती है, निकल जाए आपको निकल जाए। बस एक दूध से एक थन से पिए, रोज थन आवे टपके सामने बड़ा हुआ, ऐसा बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा, उसमें मीठा डालना नहीं पड़ता, गर्म करना नहीं पड़ता, और है जो का जो रहता है पात्र में खराब नहीं होता, पीना जीता पी लो छोड़ दो मछली से, जब आओ तो पी लो बोल से भगवान के स्नेह से। जैसे माँ के दूध आता है ऐसे भगवान के सामने कोई सुनने वाला आ जाए, अर्जुन से सब पूछने वाला आ जाए, तो भगवान के धाराएं छूटती है, प्रेम की धारा छूटती है। संत महात्माओं की बात भी देखे, कोई सच्चे हृदय से जिज्ञासु होकर सुनता है तो उसके सामने गीता जी के भाव मगर टपकने लगते हैं, आने लगते हैं, बड़े जबरदस्ती से जल्दी कह नहीं सकते, वो सुन नहीं सकता, इतने भाव आते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, गीता का इतना प्रवाह है, बिल्कुल प्रवाह है प्रेम का। तो सब भाई सज्जन बहनों माताओं भाइयों बच्चों सब सुनो अपने प्रेम से और गीता का अध्ययन करो। आज गीता जयंती का दिन है, आज दिन सतगुरु किसी को शुरू कर दे, गीता याद करना, गीता का मनन करना, विचार करना, तो महाराज गीता स्वयं प्रकट होती है। गीता और रामायण इन दो ग्रंथों के लिए मैंने देखा है, ग्रंथ बहुत ऐसे महाभारत है, उपनिषद है, वेद है, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है, पुराण है, व्यास जी महाराज की वाणी विलक्षण है, अलौकिक है, संत महात्माओं की वाणी है, बहुत विचित्र है। परंतु गीता एक ऐसा प्रासादिक ग्रंथ है, इसके शरण हो जाए तो गीता स्वयं प्रकट होती है, रामायण जी स्वयं आती है। अब पाठ होने वाला है रामायण का भी, दो दिन के बाद देखो तमाशा है। ये कोई भगवान की कृपा से हम लोगों को मौका मिला है, तो आज गीता की बात है तो याद करो, गीता को पढ़ो, गीता की गीता का टीका पढ़ो, टीका को मनन करो। आप मनन करो देखो ये कितना ही आनंद आता है, कैसे ही रस आता है, गीता में रस बरसता है बरसता है। कई वर्ष पहले एक पंडित ने कहा था, अच्छे संस्कृत के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि जैसे गीता मूल ग्रंथ है ऐसे तत्व वेशी टीका, इसमें गहरे भाव भरे हुए हैं, जल्दी अंत नहीं आता, ऐसे अनंत भाव भरे हुए ऐसी गीता ये टीका। तो टीका में कई भाव भरे हुए हैं, साधु संजीवनी के लिए लोग कहते हैं, गीता माधुरी जी कहते हैं, गीता दर्पण के लिए कहते हैं। आप करके देखो, कहने से मात्र में बहकाओ मसाओ, स्वयं करके देखो। भाई हम तो स्वयं चक्कर देखो, बढ़िया भोजन बहुत बढ़िया है, तुम्हें चक्कर देखो बाहर बाहर से होठों से बाहर बाहर का, क्या पता भोजन कैसा है, चबा कर देखो इसको, गीता को ठेर गहरे उतर करके देखो। ये मोदक है, मोदक लड्डू को मोदक कहते हैं, मोदक नाम हर्ष देने वाले, मुद हर्ष धातु हर्ष में, तो मोदक है। परंतु मोदक दीखते भी बढ़िया दीख, दीखने में चित्त प्रसन्न होता है, मगर खाने से जो रस आता होती नहीं आता। ऐसे भगवत गीता का अध्ययन करने से जो रस आता है वो देखने से नहीं आता, परंतु मोदक तो देखने में आनंद आता है, गीता के दर्शन करो तो आनंद आता है, गीता का पाठ करो तो आनंद आता है, गीता के चिंतन करो तो याद आता है, गीता के पाठ करो, केवल पाठ से मौज आती है, मस्ती हो जाती है। ऐसी बात है भाई, अब आप माने न माने आपकी मर्जी है, खुशी है, पर तो गीता में ऐसी विलक्षणता है। पाठ किया जाए एकांत बैठ करके, कंठस्थ गीता है, हो गई है ये प्रयोग, ईश्वर कृष्ण से लेकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से उल्टा पाठ कर रहा हूँ, एकांत बैठ करके पूरा पाठ करो, देखो एक समझ से विचित्रता या आनंद आ गया, विलक्षण प्रत्यक्ष आनंद गीता के पाठ में, पाठ करने में ऐसा आनंद आता है, इसलिए दिलों को आती है। इस बात से भाई अब क्या करें, गीता के विषय में अर्थ कहने लगते हूँ तो मेरे तो भाई बहुत आती है, मैंने बातें कही आती है, सुन नहीं सकता मैं, कह ही नहीं सकता, मेरे मन में आती है। गीता का अर्थ कितना है इसमें तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, किंतु कुंती सूत्र फलम, कृष्ण जाना तो यही कृष्ण गीता जानते हैं, कृष्ण भगवान और किंचित कुंती सूत्र फलम, कुछ जानता है कुंती का बेटा अर्जुन, व्यास हुआ व्यास पुत्र हुआ प्यार यागी वल को नहीं नहीं थे मरा तो जन गए याग वल गए, ये जानते अन्य संकीर्तन जिसे सुन करके संकीर्तन करते है, ऐसा गीता का अर्थ है, वो गीता का ग्रंथ। और हम लोग जैसे कलजू की थी ये बड़ा कलकत्ता कली कानूता है, ये कलजू की सी खास नगरी कली कानता, उसमें फिर गीता जैसे ग्रंथ का विवेचन ये तो कुछ भगवान की कृपा से ही अनुभव है। खार समुद्र में अमृत बेरी, खार समुद्र में एक अमृत बेरी मीठेगी कुआ निकल गया है, ऐसे भाई लंका में विभीषण आ गया, लंका में विभीषण का घर है, हनुमान जी देखते यहाँ कहा सज्जन कर भाषा, ये कहा किस घर है, कुछ संत का निवास है, लंका पुरी में भी है, ऐसे कलकत्ता पुरी में भी भगवद गीता का जो अमृतवाचन है वो एक विभीषण का घर है, ऐसे घर में अपने आए विचार करते हैं भगवान की कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा है, सज्जनों मस्त हो जाओ गीता पढ़ते पढ़ते मर, गीता अमृतम पीतवा, गीता रूपी अमृत सर्वोपनिषदों जाओ, दो था गोपाल नंदन वसुदेव नंदन नहीं गोपाल नंदन, गायन बोला वसुदेव को क्या पता, वसुदेव वासुदेव वसुदेव नंदन को क्या गीता का गाय को पालने वाला गोपाल नंदन, वो गाय को दूर सकता है और कौन जी है, तो जो था गोपाल नंदन पार्श हो वत्स बस रहा है महाराज बस रहा अर्जुन बसरे को देखा है ये पीता है को फिर ही माता ठोकर मारता है, अर्जुन कहते किम चंद्रम किम क्या ध्यान किम कर्म पुरुष आदि बोलते किम प्रोत मारे, ये अर्जुन थोबा लगा रहा है अर्जुन पास हुआ था और दूसरे वाले भगवान कृष्ण उपनिषद की गाय दुग्ध गीता में संवाद एक बहुत विलक्षण बात कही, सुधीर भोगता जिनकी शुद्ध बुद्धि वो पीते हैं, गाय का तो दूध निकल जाता है बछड़े को तो बस केवल वासने के लिए, पीने वाले को और ही मौज करते हैं मौज उठाते हैं, सुधीर भोगता अच्छी जिनकी बुद्धि है सुशुद्धि है जिनकी अच्छी बुद्धि वाले वे भोगता है, और गीता अमृत को पी करके मस्त हो जाता है, ज्ञान गीता का अर्थ लेकर के पुनर्जन्म नहीं जैसे फिर जन्म नहीं होता है, भगवान कहते हैं मेरा प्यारा कोई ऐसा हुआ नहीं है नहीं और इससे प्यारा काम करने वाला कोई होगा नहीं, ऐसा प्यारा हो शेर जी ने कहा था मेरे गीता के श्लोक लग गए, मेरे श्लोक लग गए गीता से, गीता के प्रचार करने वाला जितना प्यारा है ऐसा कोई नहीं हुआ, तो शेर जी ने कहा हमारे श्लोक लग गए तो गीता प्रेस खोल दिया, बस महाराज और प्रेसों की गीता बंद हो गई, शेर जी ने कहा मेरे सामने की बात गीता की ये श्लोक है, गीता प्रचार करने वाला भगवान कहते हैं मेरे को प्यारा बहुत लगता है, तो भगवान को प्यारा हो रहा है और अब करना क्या है, अपने क्या करना है जन्म लेकर के करना क्या है, भगवान के प्यारे हो जाए उसके कोई मन के है तो मौज हो गई। इसलिए गीता का विचार कर कैसी मौज की बात है। अब देखो थे माल हो गए खूब मौज से गीता जी का माल हो गए। अब रामायण का पाठ होगा भाई बहन विचार करे अपने भाई है कुटुंबी है संबंधी है मित्र है अपने जितने जो परिचित है उनको सुबह बुलाओ जैसे भागवत में आया है पद्म पुराण को महत्व है ना उसमें आया है कि पत्र देना चाहिए बुलाना चाहिए हमारे यहाँ भागवत की सप्ताह होगी आओ तो हमारे नवाह होगा रामायण का नवाह ऐसी मस्ती होगी आओ सब आओ देखो लूटो एक अमृत अमृत लूटो। तो इसमें रामायण के विषय में कल कुछ कहने का विचार है आज तो समय हो गया है कल आप आओ फिर गीता रामायण की बात सुनाओ रामायण के पास की थोड़ी बात सुनाओ ठीक है। अब बात मन घड़ी को एक सुनाने बात मन में है वो देखो मौका लगे तो कल जीते रहे तो सुना देंगे भाई मर गए तो रामायण सच बोल